हिस्कियेल बाब 33। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ऐ आदमजाद अपने हमवतनों को ये पैगाम पहुंचा दे, जब कभी मैं किसी मुल्क में जंग छेड़ता हूं तो उस मुल्क के बाशिंदे अपने मर्दों में से एक को चुनकर अपना पहरेदार बना लेते हैं। पहरेदार की जिम्मेदारी ये है कि ज्यों ही दुश्मन नजर आए तू ही नरसिंगा बजाकर लोगों को आगाह करे। उस वक्त जो नरसिंगे की आवाज सुनकर परवाह न करे वो खुद जिम्मेदार ठहरेगा अगर दुश्मन उस पर हमला करके उसे कत्ल करे। ये उसका अपना कसूर होगा क्योंकि उसने नरसिंगे की आवाज सुनने के बावजूद परवाह न की। लेकिन अगर वो पहरेदार की खबर मान ले तो अपनी जान को बचाएगा। अब फर्ज करो कि पहरेदार दुश्मन को देखे लेकिन न नरसिंगा बजाए न लोगों को आगाह करे। अगर नतीजे में कोई कत्ल हो जाए तो वो अपने गुनाहों के बास ही मरेगा, लेकिन मैं पहरेदार को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराऊंगा। ऐ आदमजाद, मैंने तुझे इसराइली कौम की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए लाजिम है कि जब भी मैं कुछ फरमाऊं तो तू मेरी सुनकर इसराइलियों को मेरी तरफ से आगाह करे। अगर मैं किसी बेदीन को बताना चाहूं तो यकीनन मरेगा, तो लाजिम है कि तू उसे ये सुनाकर उसकी गलत राह से आगाह करे। अगर तू ऐसा न करे तो वो बेदीन अपने गुनाहों के बास ही मरेगा, ताहम मैं तुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराऊंगा। लेकिन अगर तू उसे उसकी गलत राह से आगाह करे और वो ना माने तो वो अपने गुनाहों के बास मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान को बचाया होगा। ऐ आदमजाद, इसराइलियों को बता, तुम आहें भर भर कर कहते हो, हाय हम अपने जरायम और गुनाहों के बास गल सड़कर तबाह हो रहे हैं, हम किस तरह जीते रहे। लेकिन रब कादिर मुतलक फरमाता है, मेरी हयात की कसम, मैं बेदीन की मौत से खुश नहीं होता, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो अपनी गलत राह से हटकर जिंदा रहे। चुनांचे तौबा करो, अपनी गलत राहों को तर्क करके वापस आओ। ऐ इसराइली कौम, क्या जरूरत है कि तू मर जाए? ऐ आदमजाद, अपने हम वतनों को बता, अगर रास्तबाज गलत काम करे तो बात उसे नहीं बचाएगी। पहले रास्तबाज था, अगर वो गुनाह करे तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसके मुकाबले में अगर बेदीन अपनी बेदीनी से तौबा करके वापस आए तो ये बात उसकी तबाही का बास नहीं बनेगी कि पहले बेदीन था। हो सकता है मैं रास्तबाज को बताऊं तू जिंदा रहेगा, अगर वो ये सुनकर समझने लगे मेरी रास्तबाजी मुझे हर सूरत में बचाएगी और नतीजे में गलत काम करे तो मैं उसके तमाम रास्त कामों का लिहाज नहीं करूंगा, बल्कि उसके गलत काम के बास उसे सजाए मौत दूंगा। लेकिन फर्ज करो मैं किसी बेदीन आदमी को बताऊं तू यकीनन मरेगा, हो सकता है वो ये सुनकर अपने गुनाह से तौबा करके इंसाफ और रास्तबाजी करने लगे, वो अपने कर्जदार को वो कुछ वापस करे जो जमानत के तौर पर मिला था, वो चोरी हुई चीजें वापस कर दे, वो जिंदगी बख्श हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, गर्ज वो हर बुरे काम से गुरेज करे। इस सूरत में वो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा ही रहेगा। जो भी गुनाह उससे सरजद हुए थे वो मैं याद नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बाद में वो कुछ किया जो मुनसिफाना और रास्त था, इसलिए वो यकीनन जिंदा रहेगा। तेरे हमवतन एतराज करते हैं कि रब का सलूक सही नहीं है, जबकि उनका अपना सलूक सही नहीं है। अगर रास्तबाज अपना रास्त चाल चलन छोड़कर बदी करने लगे तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। इसके मुकाबले में अगर बेदीन अपना बेदीन चाल चलन छोड़कर वो कुछ करने लगे जो मुनसिफाना और रास्त है तो वो इस बिना पर जिंदा रहेगा। ऐ इसराइलियों, तुम दावा करते हो कि रब का सलूक सही नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हारी अदालत करते वक्त मैं हर एक के चाल चलन का ख्याल करूंगा। यहोयाकीन बादशाह की जिलावतनी के 12वें साल में एक आदमी मेरे पास आया, 10वें महीने का 5वां दिन था। ये आदमी यरूशलेम से भाग निकला था। उसने कहा, यरूशलेम दुश्मन के कब्जे में आ गया है। एक दिन पहले रब का हाथ शाम के वक्त मुझ पर आया था, और अगले दिन जब यह आदमी सुबह के वक्त पहुंचा तो रब ने मेरे मुंह को खोल दिया और मैं दोबारा बोल सका। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ऐ आदमजाद, मुल्के इसराइल के खंडरात में रहने वाले लोग कह रहे हैं, गो इब्राहिम सिर्फ एक आदमी था तो भी उसने पूरे मुल्क पर कब्जा किया, उसकी निस्बत हम बहुत हैं, इसलिए लाजिम है कि हमें ये मुल्क हासिल हो जाए। उन्हें बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि तुम गोश्त खाते हो जिसमें खून है, तुम्हारे यहां बुत परस्ती और खुनरेजी आम है, तो फिर मुल्क किस तरह तुम्हें हासिल हो सकता है? तुम अपनी तलवार पर भरोसा रखकर काबिले घिन हरकतें करते हो, हत्ता कि हर एक अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करता है, तो फिर मुल्क किस तरह तुम्हें हासिल हो सकता है? उन्हें बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मेरी हयात की कसम, जो इसराइल के खंडरात में रहते हैं वो तलवार की जद में आकर हलाक हो जाएंगे, जो बचकर खुले मैदान में जा बसे हैं उन्हें मैं दरिंदों को खिला दूंगा, और जिन्होंने पहाड़ी किलों और गारों में पनाह ली है वो मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। मैं मुल्क को वीरान व सुनसान कर दूंगा, जिस ताकत का उनको फख्र है वो जाती रहेगी। इसराइल का पहाड़ी इलाका भी इतना तबाह हो जाएगा कि लोग उसमें से गुजरने से गुरेज करेंगे। फिर जब मैं मुल्क को उनकी मकरूह हरकतों के बास वीरान व सुनसान कर दूंगा, तब वो जान लेंगे कि मैं ही रब हूँ। ऐ आदमजाद, तेरे हमवतन अपने घरों की दीवारों और दरवाजों के पास खड़े होकर तेरा जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, आओ हम नबी के पास जाकर वो पैगाम सुने जो रब की तरफ से आया है। लेकिन गो इन लोगों के हुजूम आकर तेरे पैगामात सुनने के लिए तेरे सामने बैठ जाते हैं, तो भी वो उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि उनकी जबान पर इश्क के ही गीत हैं, उन्हीं पर वो अमल करते हैं, जबकि उनका दिल नारवा नफा के पीछे पड़ा रहता है। असल में वो तेरी बातें यूं सुनते हैं जिस तरह किसी गुलूकार के गीत जो महारत से साज बजाकर सुरीली आवाज से इश्क के गीत गाए, वो तेरी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं तो भी उन पर अमल नहीं करते। लेकिन यकीनन एक दिन आने वाला है जब वो जान लेंगे कि हमारे दरमियान नबी रहा है।